मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 16 सितंबर 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 11 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं त्रिभुवन उदय राम जोशी नांदेड़ महाराष्ट्र से, जितेंद्र कुमार इलाहाबाद से, रश्मि रंजन राउत उड़ीसा से, अंकित मालवी भोपाल से, सुशील कुमार जांगिर जयपुर से और जयपुर से ही हैं दिनेश कुमावत, दिव्या सोनी शिवपुरी से, योगेश कुमार शिमला से, प्रमोद सक्सेना ग्वालियर से, इंद्रजीत कुमार महतो चंपारण बिहार से और शीतल सांगले नांदेड़ से। तो त्रिभुवन, जितेंद्र, रश्मि, अंकित, सुशील, दिनेश, दिव्या, योगेश, प्रमोद, इंद्रजीत और शीतल, आप सभी 11 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैं लगातार हिदायत देता आ रहा हूं, राय देता आ रहा हूं, आप सभी 11 साथियों के लिए भी मेरी वही हिदायतें हैं, वही राय हैं कि मित्रों जैसे भी हो जो भी हो आपको अपनी मानसिक स्थिति की मजबूती का परिचय ज्यादा से ज्यादा देना है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात होती है, सुनने में तो बहुत ही सामान्य सी बात लगती है कि ठीक है क्या होती है मानसिक मजबूती, हम वहां जाकर के सब कर लेंगे, जरूरत पड़ने पर सब हो जाता है, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। दोस्तों जैसे कि मेरे पास एक मेल आया है और वो स्टूडेंट अभी अक्टूबर की क्लास में आने वाले हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उनकी रिक्वेस्ट बिल्कुल जायज है कि सर मेरे एक दोस्त भी इसमें आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे जो रुकने का इंतजाम हो तो एक ही कमरे में हम दोनों दोस्तों का इंतजाम कर दिया जाए। डेफिनेटली हम सब लगभग यही चाहते हैं, हमें यही लगता है कि यदि हम बाहर जा रहे हैं और वहां यदि हमारे साथ हमारे कोई परिचित भी हों और अगर रुकने का उनके साथ मौका मिल जाए और वो भी 15 दिन के लिए, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, हमारे 15 दिन बड़े अच्छे से कट जाएंगे। डेफिनेटली अकेलापन दूर हो जाता है, मन बहल जाता है और वक्त आसानी के साथ गुजर जाता है। लेकिन मित्रों इसको थोड़ा सा आप मानसिक मजबूती के संदर्भ में सोच करके देखिए या अपने को एक्सपेंड करने के संदर्भ में सोच करके देखिए कि कैसे हमारे मस्तिष्क में मजबूती आएगी, कैसे हमारा विस्तार होगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने ही पसंद के दोस्त के साथ रुकते हैं जिन्हें आप बहुत पहले से जानते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप उन्हीं के साथ रुकेंगे, नया कुछ जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वही बातें आप लोग दोहरा करके करेंगे जो साल दो साल पहले कर रहे थे लेकिन अब भूल चुके हैं कि हम ये बातें भी कर रहे थे। अगर इसी की जगह आप थोड़ा सा इस सिचुएशन को बदल दीजिए और आप बिल्कुल एक नए स्टूडेंट के साथ रुकते हैं, वो नए राज्य से है, उसकी बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है सब्जेक्ट के मायने में भी और पारिवारिक पृष्ठभूमि के मायने में भी, तो जब आप एक साथ रुकेंगे तो डेफिनेटली इनसे कुछ तो बातें करेंगे ही, और जब आप बातें करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने राज्य की बातें बता रहे हैं, आप अपने राज्य की बातें बता रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट की बात बता रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट की बात बता रहे हैं, वो अपनी तैयारी के बारे में बातें कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, और 15 दिन की ये जो दोस्ती है हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी भर की दोस्ती में तब्दील हो जाए। और मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और ये जो फ्रेंड है जो आपके कमरे में है वो आंध्र प्रदेश से है, तो सोच करके देखिए कि जब भी आप उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो आप आंध्र प्रदेश में भी आप मान सकते हैं कि मैं भी वहां हूं क्योंकि वहां एक आपका ऐसा अच्छा दोस्त है जिसके साथ आपने 15 बड़े खूबसूरत दिन गुजारे हैं। लेकिन मित्रों ये जरूर है कि इसके लिए थोड़ी सी शुरुआत में मानसिक मजबूती की जरूरत पड़ती है, है ना, कि हम उसके साथ निभाएंगे, उसके साथ बैलेंस बनाएंगे, उसको एकोमोडेट करेंगे, उसे पसंद करेंगे। तो ये जो भावना है, ये जो मस्त या कह लीजिए जो विचार है, जो इच्छा है, जो मन है, ये हमें मजबूत बनाता है। मित्रों अगर हम अपने ही पसंद की चीजों को करते चले जाते हैं तो याद रखिए कि हमारा मन भी फिर कमजोर होता चला जाता है क्योंकि वो फिर तो लगातार अपने ही पसंद की तलाश करता रहता है ना, और जहां भी उसके पसंद की चीज नहीं होती वहीं वो उखड़ जाता है, वहीं वो उबने लगता है, वहीं वो कमजोर पड़ जाता है। तो मित्रों, जो हमारे मन में जो मजबूती आती है वो याद रखिए कि वो कोई बहुत बड़ी चीज से नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑपरेशन करके इस मन को निकाल दिया जाए और उसकी जगह पर कोई दूसरा मन डाल दिया जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है। यही होता है कि हम कैसे अपने को नई परिस्थितियों में डालते हैं, कैसे परिवर्तनों को हम स्वीकार करते हैं। और ऐसा नहीं कि परिवर्तन होने पर हम चुपचाप सरेंडर करके उससे किनारे हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। उसे हम जूझते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, खुले मन से उसका स्वागत करते हैं और फिर हम अपने को एक्सपेंड करते हैं। तो ऐसा मन बड़े आराम से इस बात को जानने और समझने लगता है कि नहीं, इसके साथ मेरी दादागिरी नहीं चलेगी, ये तो वही करेगा, ये आदमी, ये बच्चा, ये स्टूडेंट जो ये चाहेगा। तो ज्यादा अच्छा है कि झगड़ा करने से बेहतर है कि हम ठीक है, मैं इसकी बात मान लेता हूं और फिर वह स्वामी बनने की इच्छा को छोड़कर आपका सर्वेंट बन जाता है। और जिस दिन ऐसा हो जाता है उस दिन मान करके चलिए कि आप जगत जीत लेते हैं। मित्रों, कभी कभी मुझे यह लगता है मन हमारा है लेकिन हमारा नहीं है, दिमाग हमारा है लेकिन हमारा नहीं है। तो जब यही चीज हमारा नहीं है तो फिर हमारा है क्या, आप सोच करके देखिए। और फिर मुझे यह भी लगता है कि जब हमारी अपनी ही चीज अपनी नहीं है तो दूसरे की चीज कैसे हम अपनी बना पाएंगे, यह भी एक बड़ी चुनौती सी मुझे लगती है। तो इसलिए दोस्तों, कल जो मैंने आप लोगों से जो बात कही थी कि इस बात का मूल्यांकन कीजिए कि आपका ये जो मन है ये किसका है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपना अपना मूल्यांकन कर लिया होगा। अब मैं इसके थोड़े से व्यावहारिक पक्ष पर आता हूं, है ना। चलिए मैं सिविल सर्विस की ही बात करता हूं या पढ़ाई की ही बात करता हूं, सिविल सर्विस हो या पीएससी हो या आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, एक पढ़ाई की हम बात करते हैं। हम पढ़ते हैं और उबने लगते हैं, शुरू में तो हम जोश खरोश के साथ लग जाते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत जोश खरोश के साथ लगते हैं लोग, बहुत लड़के जोश खरोश के साथ एडमिशन लेते हैं, बाद में ढीले पड़ने लगते हैं, है ना, बाद में इसके बाद गिव अप कर देते हैं, छोड़ छाड़ करके अलग हो जाते हैं। तो शुरू का जोश था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस जोश को बनाए नहीं रख सके, यानी कि मन उनका उबने लगा, उखड़ने लगा, जो कुछ भी आप कह लीजिए। तो मित्रों, मुझे इसका एक बहुत बड़ा एक व्यावहारिक कारण यह लगता है कि जो हमने फैसला किया था या जिससे हमने अपने मन को जोड़ा था उसके प्रति हमारा लगाव नहीं था, या लगाव था भी तो बड़ा झूठा लगाव था। क्योंकि यदि सच्चा लगाव होता तो सच्चा लगाव तो आसानी से छूटता नहीं है। जैसे अगर हमको अपने गांव से, अपने शहर से प्रेम हो जाता है तो आप देखिए कि हम ताउम्र उस लगाव को याद करते रहते हैं और लोगों को बताते भी रहते हैं और उस स्मृति को एंजॉय भी करते रहते हैं, उसका स्वाद हमारा दिमाग लेता रहता है। तो मित्रों, फिर हमको यह सोचना पड़ेगा कि हमारा शुरू में लगाव था लेकिन अब लगाव नहीं है, तो यह लगाव सच्चा नहीं था, तो यह लगाव सच्चा क्यों नहीं था। चलिए मैं इस बहुत ही व्यावहारिक बात पर आता हूं और मैं इसको अब सिविल सर्विस पर अप्लाई करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। मित्रों, आप सिविल सर्विस के बारे में सोचते हैं, लग जाते हैं, है ना, उसका ग्लैमर देखते हैं, उनकी प्रतिष्ठा देखते हैं, तो आपको लगता है कि वाह क्या बात है, मुझे भी ये करना चाहिए। आप गलत नहीं सोच रहे हैं और आप उस काम में लग भी जाते हैं। कुछ समय के बाद जब देखते हैं कि इतना पढ़ना पड़ता है तो आपका मन उबने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है और आप अपने आप को उससे विड्रॉ करने लगते हैं, राइट। इसका मतलब है कि आपका लगाव गहरा नहीं था। तो दोस्तों, ये गहरा लगाव क्यों नहीं था? मुझे ऐसा लगता है कि ये गहरा लगाव इसलिए नहीं था क्योंकि आप उस चीज जिसे आप पाना चाहते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। सच पूछे मित्रों, कि जब मैं व्यवहारिक जीवन के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा लोभ है ना, जिसको हम लालच कहते हैं या लाभ कह लीजिए, ये ना बड़े काम की चीज होती है, ये आलोचना की बात नहीं होती। कभी कभी थोड़ा सा लोभ होना चाहिए, लालच होना चाहिए। तो जब आप आईएएस के बनने के बारे में सोचते हैं तो मन में थोड़ा सा ना लाभ, लोभ और लालच भी पालिए। मैं उस भ्रष्टाचार वाले लाभ और लोभ और लालच की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ये केवल नौकरी नहीं है, ये बहुत ही और भी आपको विस्तार देती है, प्रतिष्ठा तो देती ही है, आपको जीवन के बारे में निश्चितता दे देती है, आपको इंश्योर कर देती है और बड़े हाईएस्ट लेवल पर आपको इंश्योर करती है। मित्रों जिंदगी के जो बहुत छोटे छोटे सामान्य सी परेशानियां होती हैं उनसे वो आपको मुक्त कर देती है, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग पूरे देश में फैला हुआ होता है और सच पूछे तो पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है। यहां तक कि जब आप सिविल सर्वेंट हो जाते हैं तो सोसाइटी भी आपको चूंकि एक विशेष नजरिए से देखती है, आपकी योग्यता को रिकॉग्नाइज करती है, इसीलिए यदि आपकी जरूरत हुई तो वो भी आपकी मदद के लिए सामने आती है, बशर्ते कि उन लोगों को आपने अपना बना लिया हो। तो दोस्तों जब आप सिविल सर्विस को ना सिर्फ सेवा करने की भावना से सोचते हैं, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, ज्यादातर लोग क्या मेरी समझ से 100% लोग यही कहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, समाज के लिए करना चाहता हूं, लोगों की सेवा करना चाहता हूं, तब आप जब लोगों की सेवा करने की बात सोचते हैं तो आपका अपना लाभ तो है नहीं, अपना लोभ तो है नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी आप जिस उम्र में हैं, याद रखिए ये बहुत ही आदर्शवादी उम्र होती है, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक एज होती है, हमारे दिमाग के बहुत से आदर्श भरे होते हैं और वो बहुत अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है, लेकिन इस आदर्श के सामने हमें जीवन के यथार्थ को भी जोड़कर चलना चाहिए, और जब आप जीवन के यथार्थ को जोड़कर चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसी आईएएस का, जिसे सिविल सर्विस आप कह लीजिए, अर्थ आपके लिए बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, उसमें आप खुद शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वहां आपको अपने जीवन की समस्याओं का समाधान दिखेगा, या हो सकता है कि बहुत सी समस्याएं तो वैसे आए भी ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, यहां आने के बाद जीवन भी अच्छा रहेगा, सुकून से कटेगा, हम फालतू की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, आर्थिक रूप से एक तरह से स्वावलंबी हम हो जाएंगे, और हमारे पास कुछ अधिकार भी होंगे, उस अधिकार के तहत हम दूसरों की भी मदद कर सकेंगे, समाज के लिए कुछ कर सकेंगे, डेफिनेटली ये भी बात है, और जब हम समाज के लिए करेंगे तो समाज हमें रिकॉग्नाइज करेगा, हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, वो जब हमारा नाम लेंगे, जब हमें पहचानेंगे, नमस्ते करेंगे, तो उससे एक बड़ा आत्मविश्वास का भाव बढ़ता है, प्रतिष्ठा का भाव भी मन में आता है और स्वाभिमान भी पैदा होता है। तो दोस्तों जब हम अपने किसी भी काम में, मान लीजिए कि आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी इसी तरह की कुछ चीज जोड़ दीजिए कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो फिर अभी क्या करूंगा, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो फिर अगर अनपढ़ रह जाऊंगा तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मुझे आगे चल करके कुछ भी हासिल करना है तो वो इस पढ़ाई के थ्रू ही तो हासिल होगा, और चलिए आपको नौकरी नहीं भी करना है तो अब इस समय का तो मैं इस्तेमाल करूं, ईश्वर ने मुझे कितना अच्छा मौका दिया है कि मैं पूरी तरह से पढ़ाई के लिए समर्पित हूं, मुझे सिर्फ पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करूं, इस ज्ञान का इस्तेमाल जिंदगी में आगे जाकर के मैं पता नहीं किन किन रूपों में और कहां कहां नहीं करूंगा और इससे मेरी जिंदगी सुधरेगी। तो दोस्तों जब आप अपने उस लोभ और लालच को, अपनी प्रतिष्ठा को, जो भी आप कह लीजिए, उससे जोड़ देते हैं तो फिर उससे आपका लगाव बढ़ जाता है, और फिर जब लगाव बढ़ जाता है दोस्तों तो फिर मन का जो उबना है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि आपका मन उबना बंद कर देगा, वो उसका स्वभाव है, उचटता ही है, हर जगह आप अपनी कितनी भी पसंद की चीज को चुन लीजिए, कुछ समय के बाद मन उचटेगा, लेकिन अगर वो वाकई में पसंद की चीज है और आपका उससे गहरा लगाव है तो कुछ समय के बाद फिर से वो अपने को आपको बुलाने लगेगा, वो जो चीज है, जो लगाव है, वो आपको फिर उधर खींच करके ले जाएगी और फिर आपसे जोड़ देगी, फिर आप वहां हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के लिए फिर वहां से अलग हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उससे परेशान होने की बात नहीं है। परेशानी तो तब होती है दोस्तों कि जब बड़ी जबरदस्ती करके मन लगाना पड़ता है और हर समय उखड़ा ही उखड़ा रहता है। इसीलिए दोस्तों एक बात मैं कहूंगा कि अपने उद्देश्य को बहुत स्पष्ट करें, अपने उद्देश्य को बहुत व्यावहारिक बनाएं, इसे ही आप दूसरे अच्छे शब्दों में कह सकते हैं कि यथार्थवादी बनाएं, इससे आपके अपने काम के प्रति आपका लगाव पैदा होगा, और जब लगाव पैदा होगा तो आप देखेंगे कि जो उबने की जो आदत है, उबने का जो भाव है, वो डेफिनेटली कम होगा। तो मित्रों इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की आप लोगों से अनुमति चाहता हूं, और अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो AIR न्यूज का स्टेज है। मित्रों आप लोगों ने AIR न्यूज सुनी ही होगी, जैसा कि मैं रोज ही आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को आज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अपने इस डेली ऑडियो में AIR न्यूज की महत्वपूर्ण उन चीजों को जो सिविल सर्विस में आपके काम की हो सकती हैं आपके सामने रखता हूं, उसकी एनालिसिस भी करता हूं, लेकिन आप इसके आधार पर आप लोगों में से कोई भी ये गलत फहमी बिल्कुल न पाले कि जब मैं उस न्यूज की चर्चा कर ही रहा हूं तो फिर आप ओरिजिनल न्यूज क्यों सुनेंगे, उसकी सुनने की जरूरत क्यों है, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। देखिए मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि मैं तो केवल आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा हूं, कि उतनी सारी न्यूज में कौन सी आपके लिए जरूरी है, बाकी सब बेकार है। तो जब आप उतनी सारी न्यूज नहीं सुनेंगे तब फिर आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी सारी कौन कौन सी न्यूज में से कौन कौन सी आपके लिए निकाली गई है और जो जरूरी है, आपको नहीं पता लगेगा। फिर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी। दूसरी बात मित्रों की, जो एक न्यूज होती है, याद रखिए सिर्फ एक ही न्यूज नहीं होती, उसका संबंध दूसरी बहुत सी चीजों से होता है। आज जिस न्यूज की हम बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि 5 दिन के बाद कहीं ना कहीं से वो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए और एनालिसिस करने के दौरान हमें उसकी जरूरत पड़े। क्योंकि देखिए, जो एनालिसिस है, जो आपके विश्लेषण करने की जो क्षमता है, जो सिविल सर्विस के मेन एग्जामिनेशन का एक तरह से कहिए स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना मेन एग्जाम तो क्वालिफाई करना मुश्किल है, कम से कम अब के एग्जाम को। तो वो जो एनालिसिस पावर है उसके लिए कंटेंट की जरूरत होगी, तथ्यों की जरूरत होगी, या कह लीजिए नॉलेज की जरूरत होगी, और सिंपल रूप में हम कहें तो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। तो फिर वो आएगा कहां से? हवा से तो नहीं आने का है। हवा में तो आप लेकर के कविताएं लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, हो सकता है गद्य लिख दें, कोई अच्छा सा निबंध लिख दें, लेकिन यहां तो उससे बात नहीं बनेगी, है ना। यहां तो फैक्ट चाहिए, कंटेंट चाहिए, तथ्य चाहिए, वस्तु चाहिए, और वो आपको न्यूज से मिलेगी। तो मित्रों, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप ऑडियो, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो, और यदि आप वैसे ही सुन रहे हैं तो डजंट मैटर, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि ये उसका सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि न्यूज और न्यूज पेपर एक दूसरे के पूरक हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसी तरह से रेडियो न्यूज और ये मेरा डेली ऑडियो गाइडेंस एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखिए, एक दूसरे को विकल्प नहीं है। राइट दोस्तों, फ्रेंड्स, जो एक खबर थी वो थी भारत एवं श्रीलंका को लेकर के। आपको मैंने कल बताया था कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हैं और अभी अभी चुनाव हुए थे, उसमें वही पार्टी सत्ता में आई जो भारत की पक्षधर है। चीन के साथ भारत के संबंध को लेकर के जो श्रीलंका की स्थिति है उसके बारे में मैंने कल आप लोगों से कुछ चर्चाएं की थी। आप न्यूज में आपने देखा कि जो 3-4 मुद्दों पर जो बातचीत हुई है और जिनको न्यूज में लिया गया, देखिए मुद्दों पर तो बहुत सी बातचीत होती है ना, बहुत से मुद्दे होते हैं, लेकिन न्यूज में उनको लिया जाता है जो हमारे लिए सबसे अहम रखते हैं, सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और यही फिर हमारे चयन करने की बात है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ जाता है भारत श्रीलंका के संबंधों पर, तो भारत श्रीलंका के संबंधों पर हो सकता है कि आपको 20 पॉइंट मालूम हो, 20 पॉइंट्स मालूम है, और आप अगर कोई निकालेंगे कोई किताब तो हो सकता है कि उसमें 20 पॉइंट दिए भी हों, शैक्षणिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, फलाना संबंध, इस तरह के 20 दिए हुए होंगे। लेकिन अगर आपको 200 शब्दों में 10-12 नंबर के लिए एक उत्तर लिखना है तो आप उन 20 की चर्चा नहीं कर सकते। और देखिए, यदि आप 20 की चर्चा करेंगे तो आप कभी ये मत समझिएगा कि एग्जामिनर बड़ा प्रभावित होगा कि यार देखो इसको तो सबका सब मालूम है। नहीं, वो चाहता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे श्रीलंका के संबंध, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको हाईलाइट करें, उनको गंभीरता के साथ बताएं, एनालिसिस के साथ बताएं, उनकी इंपॉर्टेंस बताएं, और उन केवल 5-7 पॉइंट्स ले लीजिए, 5-7 भी नहीं है जरूरत है, केवल 3-4 पॉइंट ले लीजिए। और ये जो 3-4 पॉइंट होते हैं वो होते हैं जो न्यूज में मेंशन किए जाते हैं, फिर उन्हीं को बेस बना करके, न्यूज को बेस नहीं, मतलब वो जो 3-4 पॉइंट होते हैं जो सबको मालूम होते हैं, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वो जानते हैं, उन्हीं को बेस बना करके फिर आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और एडिटोरियल कमेंट्स भी आते हैं। तो मित्रों, जैसे न्यूज में आपने सुना आतंकवाद, आतंकवाद पर दोनों देशों ने एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद तो केवल भारत की समस्या नहीं, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया की समस्या है। फिर आपने देखा कि तमिल की समस्या, श्रीलंका में बहुत से तमिल भाषी हैं जो भारत से ही गए हैं। आप देखेंगे कि चूंकि नक्शे में दक्षिण भारत में तमिल आता है, इसके बाद श्रीलंका वहां बहुत नजदीक है, थोड़ी दूरी है वहां से, आप देखिए समुद्र के रास्ते पर, तो वहां बहुत से तमिल हैं वहां, तो तमिल इलम की मांग को लेकर के वहां बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, और भारत इस पक्ष में रहता है, पक्ष में नहीं कहना चाहिए, भारत को यह देखना पड़ता है कि भाई वो जो तमिल हैं उनके संबंध भारत से भी हैं और भारत से गए हुए हैं, तो एक संवेदनशील मामला है। तो श्रीलंका सरकार भी ये ना समझे कि हम भारत उनके मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि हमारे यहां तमिल हैं और श्रीलंका सरकार के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, तो इस संवेदनशील मामले को कैसे हैंडल किया जाए, है ना, ये मामला थोड़ा संवेदनशील है, तो उस मामले पर बातचीत हुई। इसके बाद आपने देखा व्यापार के बारे में बात हुई और डेफिनेटली जो व्यापार है, जो बिजनेस है, अभी किया जो एक इंटरनेशनल रिलेशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है। और आज भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो व्यापार ही है, कि अब भारत की उपेक्षा बड़े से बड़ा देश भी आसानी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास न केवल रॉ मटेरियल ही है बल्कि इतना बड़ा मार्केट भी है, और न केवल मार्केट ही है मतलब कंज्यूमर ही है बल्कि इतना बड़ा वर्कफोर्स भी है। तो भारत की उपेक्षा करना अब इतना आसान नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी विदेशी कोई आएगा उसके साथ जब बातचीत होती है तो उसमें भी एक व्यापार जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है, कम से कम आज के इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर आपने देखा डिफेंस, रक्षा, रक्षा और सुरक्षा दोनों ही एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए, काफी कुछ जुड़े हुए। तो रक्षा दोस्तों बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था और आप देखेंगे कि आगे आर्टिकल्स आएंगे भारत और श्रीलंका के बीच में, जो बातचीत जब फाइनल हो जाएगी तो डेफिनेटली इसको लेकर के एनालिटिकल आर्टिकल्स आएंगे, कि जो हिंद महासागर का वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसको लेकर के अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं और भारत के लिए उसका बहुत बड़ा महत्व भी है, बहुत बड़ा महत्व है, केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से। और व्यापार का जो रास्ता है जहाजों के जाने का वो वही है, सुरक्षा की दृष्टि से भी हिंद महासागर बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ऐसे लिहाज से भारत और श्रीलंका के रक्षा संबंधी जो समझौते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। आप देखेंगे कि श्रीलंका जो है ना वो हिंद महासागर के उस पर बसा हुआ है, और मित्रों फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स को अगर ध्यान आ रहा हो तो मैंने काफी पहले आप लोगों को एक स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया है जिसमें भारत के लिए जो हिंद महासागर की जो भूमिका है, जो इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया था। और फिर यह बताया था कि किस तरह से हिंद महासागर, चीन हिंद महासागर की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है और भारत उसके लिए क्या उपाय कर रहा है। मैंने आप लोगों को स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया था और मैं चाहूंगा कि ये एक सही समय है जबकि आप लोग उस स्पेशल ऑडियो को एक बार फिर से सुने। इसके बाद दोस्तों मछुआरे की बात होती है, अक्सर आप देखते हैं बहुत थोड़ी सी दूरी है तो मछुआरे, अब उनको कोई दीवार तो दिखती नहीं है, समुद्र में भटकते भटकते उनकी सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, उधर के इधर प्रवेश कर जाते हैं, तो ये चलता रहता है, अब अरेस्ट होते रहते हैं, फिर मछुआरों को छोड़ा जाता है, सरकारी स्तर पर बातचीत होती है। जैसे अभी भी जब वहां से प्रधानमंत्री श्रीलंका से भारत में आ रहे थे तो सद्भावना के तहत कुछ मछुआरों को छोड़ा गया, तो ये भी एक चलता रहता है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो भारत और श्रीलंका के संबंधों में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो मित्रों अभी इस पर आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल कमेंट भी डेफिनेटली आएंगे, तो उन पर आप अपना ध्यान दीजिएगा। मित्रों दूसरी जो एक बड़ी खबर थी, मैं समझता हूं कि एक बड़ी ही खबर थी, वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान में हमारे राष्ट्रपति जी गए थे और उसमें उन्होंने कहा कि भारत को अपने इनोवेशन के लिए ध्यान देना चाहिए। मित्रों अक्सर आप देखेंगे इसके ऊपर मैंने अभी ना एक दो चार दिन पहले ही आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स और कुछ एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड किए हैं, खासकर भारत में जो शैक्षणिक संस्थानों की जो स्थिति है। भारत एक समय विश्व गुरु माना जाता था, नो डाउट नॉलेज सेंटर भारत था, लेकिन अब मॉडर्न एज में आप देखेंगे कि शुरू की जो 500 यूनिवर्सिटीज हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भारत की बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिटी, और फर्स्ट 200 में तो कोई थी ही नहीं, बेंगलोर का जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो था। अभी एक अच्छी खबर यह आई है कि अब 200 में भारत की दो संस्थान हो गए हैं, एक तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का ही है, बेंगलुरु का, और दूसरा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली का, कि मतलब 200 में कम से कम वर्ल्ड लेवल की ये दो इंस्टीट्यूशन हमारे हैं। फिर जब हम 500 की लिस्ट देखते हैं तो उसमें फिर जो हमारे बहुत से IITs हैं जिसमें खड़गपुर है, रुड़की है, कानपुर है, ये जो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय हैं ये भी फिर उसमें आते हैं। मित्रों यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि अब हम जिस एज में एंटर कर रहे हैं तो वो नॉलेज का युग है, ज्ञान का युग है। अब वही देश सच पूछे तो प्रोमिनेंट होगा, कमांड करेगा जहां इनोवेशन होंगे, जहां जिसके पास तकनीकी ज्ञान ही नहीं होगा बल्कि जो तकनीकी प्रयोग भी करेगा। सच पूछे तो भारतीय उद्योगों के सामने जो एक बहुत बड़ी चुनौती आती है वो यही आती है कि वो अपने इनोवेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप ये भी देखिए कि हमारे यहां IIT और IIM संस्थान है जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया माने जाते हैं, वो निकलते हैं वहां से स्टूडेंट पढ़ करके, तो उसमें रिसर्च में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। सबके सब नौकरी करने में की तरफ लालायित होते हैं या फिर अपना काम कर लेते हैं, अच्छा भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ अभी स्टार्ट सब आज बहुत अच्छे स्टूडेंट निकले हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, या फिर वो मल्टीनेशनल कंपनी के जाकर के बिजनेस संभालते हैं, वहां नाम कमाते हैं, तो उसमें इनोवेशन नहीं है, उसमें नया आविष्कार नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, और नतीजा यह होता है कि फिर हम पिछड़ जाते हैं। देखिए, रिसर्च क्यों नहीं है, उसके बहुत से कारण है, और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा अवसर है जब आपको इस टॉपिक को तैयार करना चाहिए कि भारत में जो रिसर्च की स्थितियां हैं इतनी कम क्यों हैं। मतलब एक आंकड़ा था, दो तीन दिन पहले ही मैंने पढ़ा था और शायद आप लोगों को मैंने प्रोवाइड भी किया है कि जो हमारी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़े संस्थान हैं कंपनीज, वो रिसर्च का केवल अपने टोटल उनका जो बजट होता है उसका 3% रिसर्च में लगाते हैं, जिसको R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम में लगाते हैं, जबकि चाइना अपने टोटल, चाइना के जो इंडस्ट्री है वो अपने टोटल बजट का लगभग 11% रिसर्च में लगाते हैं। इसीलिए चाइना धीरे धीरे इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा यह कि हायर एजुकेशन पर जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी 1% से नीचे है, जबकि दूसरे देशों के एक्सपेंडिचर 5-6% है हायर एजुकेशन में। और यही कारण है दोस्तों कि अगर शुरू के 10 की लिस्ट आप देखें अभी जो आई है, उसमें से 5 इंस्टीट्यूशन सिर्फ अमेरिका के हैं, 5 इंस्टीट्यूशन 10 में 5 अमेरिका के हैं, 4 ब्रिटेन के हैं और 1 स्विट्जरलैंड का है। तो शुरू के 10 में ये 3 देश आपस में इन लोगों ने वो कर लिया है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें से जो टॉप पर जो इंस्टीट्यूट है, वो अगर आप ऑडियो मेरा लंबे समय से सुन रहे हैं, वो MIT है, मॉरिशस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वहां एक स्टूडेंट है जो हमारे सेकेंड बैच में आया था, वो वहां राहुल राय वहां पढ़ाई कर रहे हैं। तो मित्रों, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो रिसर्च और इनोवेशन की तरफ ध्यान दे, और यही आह्वान हमारे राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान में जब वो गए थे तो उन्होंने कहा है कि हमारे स्टूडेंट्स इधर ज्यादा से ज्यादा आए। मित्रों, एक जो अगली छोटी सी खबर है जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो अंकोर वाट मंदिर को लेकर के है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको मालूम है कि अभी कंबोडिया गए हुए हैं, फिर वो अंकोर वाट मंदिर भी जाएंगे। आप इतिहास में भी अंकोर वाट मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, ये भारतीय धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ मंदिर है, और ये मंदिर कहां स्थित है, इस तरह के प्री में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशाल मंदिर है जो एक तरह से साउथ की शैली पर बना हुआ है। आपको, आप चित्र देखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अंकोर वाट मंदिर किस देश में है, और आप कंबोडिया एशियान का सदस्य है, और भारत जैसा कि आपको मालूम है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को फिलहाल बहुत तरजीह दे रहा है। यही कारण है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी कंबोडिया गए हैं, फिर वो लाओस भी जाएंगे। मित्रों, एक जो छोटी सी खबर थी, ये टेम्परेरी है लेकिन आपके नॉलेज में होनी चाहिए, वो ये है कि अभी पिछले कुछ समय से भारत के निर्यात में गिरावट आई है, और स्वाभाविक है कि जब निर्यात में गिरावट आएगी तो आयात में भी कमी आएगी। ये इस बात का संकेत है कि किस तरीके से वास्तव में विश्व एक मंदी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि तभी हमारी, चूंकि अब जब अगर विश्व में मंदी है तो विश्व के लोगों की क्रय शक्ति कम है, तो उनकी जो क्रय शक्ति कम है तो हमारा सामान कम खरीदेंगे, तो ऐसे में हमारा निर्यात कम होगा ही, और चीन अभी उसी संकट के दौर से गुजर रहा है। तो ये थोड़ी सी जानकारी के लिए आपके लिए है। मित्रों, AIR न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर के दोस्तों क्लिपिंग्स जो हैं आपको नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उसमें आप देखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के 3 आर्टिकल आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक तो खासकर जो मांस कह लीजिए उस पर जो अभी बैन लगाया जा रहा है, कुछ विशेष पर्वों को ध्यान में रख करके उस पर एक आर्टिकल है, भारतीय संस्कृति वर्सेस मीट को लेकर, कि वास्तव में भारतीय संस्कृति क्या रही है और जो मांसाहार है कह लीजिए उसकी क्या स्थिति है और हमारे संविधान में किस तरह का प्रोविजन है, इसको लेकर के एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस पर कल भी आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया गया था, इसमें आपको कुछ एक दो नई चीजें मिलेंगी, वो आप लोग देख लेंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूं। और मित्रों, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार के, उसमें सुधार के बारे में, विस्तार नहीं कहना चाहिए, उसमें सुधार के बारे में वहां की महासभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और भारत उसका एक बहुत बड़ा दावेदार है, उसको लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कमेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कल चूंकि मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, इसलिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग वो सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो गए हैं। दोस्तों एक दैनिक जागरण का एक बहुत अच्छा आर्टिकल आज आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा, खासकर छोटे उद्यमियों को लेकर के, डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का। मैं बता चुका हूं कि डॉक्टर भरत झुनझुनवाला बहुत अच्छा लिखते हैं। वो एक जो परंपरागत सोच है उसकी जगह पर एक नई सोच प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने यही स्थापित करने की कोशिश की है कि हम मेक इन इंडिया लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो इस बात पर देना चाहिए कि किस तरह से हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा सकें। और अभी जो हाई टेक्नोलॉजी आ रही है वो रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मित्रों, खासकर अभी जो गुजरात में जो पाटीदार समुदाय अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये माना जा रहा है वो है नए रोजगारों का उपलब्ध न होना, और हाई टेक्नोलॉजी के कारण जो पुराने उद्योग थे उनका खत्म होते चले जाना। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें दिखाया हुआ है कि सूरत जो डायमंड का एक तरह से विश्व केंद्र माना जाता है, डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग के सारे काम सूरत में होते हैं, वहां पिछले दिनों कुछ समय से जब हाई टेक्नोलॉजी की कंपनीज आने लगी तो लगभग 20,000 शॉप्स, दुकानें जहां इस तरह के काम होते थे, वर्कशॉप जैसे कह लीजिए, लगभग 20,000 वहां बंद हो गए और वो सब लोग अपने गांव लौट गए हैं। तो सोच करके देखिए कि 20,000 बंद हो जाने का मतलब है 20,000 परिवारों के हाथ से रोजगार छिन जाना। तो ऐसी स्थिति में फिर वो उनकी डिमांड होती है कि हमें भी आरक्षण दिया जाए, तो कम से कम अगर हम अपना रोजगार नहीं कर सकते तो अपना नौकरी ही कर लें। तो मित्रों, इस तरह से चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो भरत झुनझुनवाला जी ने यही स्थापित करने की कोशिश की है कि भारत को रोजगार ओरिएंटेड उद्योगों की तरफ जाना चाहिए, और उसमें उन्हें जीएसटी को लेकर के बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं अंत में ईमेल पर। तो सबसे पहले मेरे पास मेल में मैं बताना चाहूंगा, चंदन पांडे का मेल आया है जो नवादा बिहार से आने वाले हैं। उन्होंने लिखा है कि जो स्टूडेंट नवादा से, कारवी सराय से और जमुई से आ रहे हों अभी अक्टूबर की क्लास के लिए, वे उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चंदन पांडे का मोबाइल नंबर है 9631841386। और मित्रों, अब मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी को जिन्होंने मेल लिखे हैं, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, मयंक कुमार पोर्ट ब्लेयर से, अंशिता पांडे गोरखपुर से, अनिरुद्ध सिंह चौहान भोपाल से, गौरव साहू अंकुश शिमला से, रजिया और मुकेश कुमार न्यू दिल्ली से। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के इस ऑडियो गाइडेंस को अब यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।